लेकिन ये जिम्मेदारी कर्म की स्वतंत्रता हमें आपको मिले। परमात्मा आपके साथ है, लेकिन क्या आप परमात्मा के साथ हैं? परमात्मा ने कर्म किया, एक हनुमान जी की बात ले लो, राम हनुमान जी के साथ हैं, हनुमान सीता की खोज में जाते हैं, लेकिन हनुमान की तैयारी कितनी है, हनुमान में संयम कितना है, वो कभी किसी से प्रभावित नहीं हुए, हुए तो केवल राम से। लेकिन केवल आपको हाथ जोड़ के बताऊंगा, हनुमान जी के कैरेक्टर को डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़ों वैज्ञानिक आधार पर बताता हूं, वो राम से प्रभावित हैं, उन्हीं का सुनते हैं, देखते हैं, काम भी उन्हीं का करते हैं। राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। लेकिन जब लक्ष्मण की बात आई कि सूरज निकलने से पहले संजीवनी आ जानी चाहिए, तो गति है, गए, लेकिन रामायण पढ़िए, वहां राम को नहीं याद किया। आज मनोवैज्ञानिक कहते हैं हनुमान जी महान हैं, हनुमान जी में बड़ी शक्ति है, लेकिन आए दुनिया वालों विचार करो, हर क्षण हनुमान जी कहते हैं कि राम का जो कार्य है, कुछ भी परिस्थिति होगी उसमें से रास्ता निकालूंगा और करूंगा। ये परिस्थिति सीता तक पहुंचने की देखी है, एक से एक राक्षस, राक्षसनिया, रामायण कई बार आप पढ़ चुके हैं, मैं तो केवल संकेत देता हूं। और राम का नाम लेते हुए अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने संयम से उसने से रास्ता निकाला। संजीवनी बूटी सूरज निकलने से पहले आ जानी चाहिए, लेकिन वहां पर राम को नहीं याद किया, और आप जानते हैं क्या हुआ। अभी यही राम आपके साथ है, वो चाहे शिव का स्वरूप है, कृष्ण का है, गुरु का है, माता का है, पिता का है, कि नदी का है, मैं सबको मानता हूं। आपकी जहां आस्था है, आप पेड़ को मानते हो। एक बार मेरे पास कोई आया, कहे स्वामी जी आपके एक शिष्य पेड़ की पूजा करता है। मैंने कहा हाँ। हमने कहा है, कहा स्वामी जी आप वैज्ञानिक होके कहे। मैंने कहा हाँ, समझ के कहा। मेरा शिष्य पेड़ में आस्था रखता है, और मैंने कहा सब जगह परमात्मा है, जिस आकार में तेरी आस्था है वह विचार दृढ़ बना, और दृढ़ता में जब हमारे प्रहलाद पत्थर में से, खंभे में से भगवान को प्रकट कर सकते हैं, तो आस्था विश्वास के बल पर, श्रद्धा विश्वास के बल पर मेरा शिष्य पेड़ में से भगवान को क्यों नहीं प्रकट कर सकता। यही मैं आपसे कहता हूं, आप जहां भी जाते मानिए, ये तो 150 बरस हम लोग आधीन रहे, गुलाम रहे, उसमें हमारे आपको बहुत अगर मगर में लगा दिया गया। हमारी कहानियां संभव है पढ़ा लिखा लोग, वैज्ञानिक लोग कल्पना माने, लेकिन प्रियात्मन आज विज्ञान भी एक उत्तर दे रहा है कि कल्पना का आधार भी सत्य है। जो सत्य है कहीं न कहीं किसी तरह से है, वही बड़े प्यार से कहूं कल्पना में बात आएगी। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट रसिया की है, पहले हम लोगों की बात नहीं, मैं रसिया मानता था, लेकिन जब से हमारी आपकी खोज किए, हमारे वेदों को देखा, शास्त्रों को पढ़ा, हमारी साधु संतों की जीवनी को देखा, तो हर तरह से देखा। पहले बता दूं, हमारे प्रभु ने किसने कहा है, जहां पर विशेषता दिखाई पड़े वहां मैं हूं। पहले इस पर तवज्जो नहीं दिया गया, जहां पर विशेषता दिखाई दे वहां परमात्मा है, परमात्मा का गुण है। और हम कहते हैं परमात्मा सब में है, तो प्रिय आत्मन अब आपके अभी खुलेआम तो नहीं, लेकिन आपके वैज्ञानिक भी अब माता पिता गुरु की शक्तियों का परिचय विज्ञान के माध्यम से दे रहे हैं। कैसे, पहले थोड़ा बता दूं। प्रिय आत्मन मेरा इशारा है और आप इसे जात समझेंगे। मोर का जो प्रजनन है वो केवल देखने से है, मछली का भी देखने से है, कुछ का स्पर्श से है। और साइबेरिया के एक पंछी है, अंडा दे के आ जाता है, केवल संकल्प से उसका डेवलप करता है। पहले लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज विज्ञान के आधार पर आपके समक्ष कहना चाहता हूं, आप मेरे मित्र हैं, मेरे पिता हैं, मेरी मां हैं, एक मेरे गुरु हैं। जहां पर अंतःकरण की शुद्धि है, जहां पर अंतःकरण पवित्र शुद्ध है, याद रखिएगा संकल्प से भी आपको विकास में लाया जा सकता है, भले 1000 किलोमीटर पर हो। आप माता पिता गुरु के सामने बैठते हो, ये देखने से भी स्पर्श से भी आपकी शक्ति को जागरण किया जा सकता है। इस शक्तिपात की बात आई, पहले नहीं मानते थे, चरण स्पर्श की बात आई नहीं मानते थे, लेकिन आज अब विज्ञान भी कह रहा है कि भारत की जो पद्धति है वो पूरी वैज्ञानिक है, जो भी पवित्र है। लेकिन उसके साथ बता दो, ऐसा नहीं कि मैं आपको अंधविश्वास में ले जाऊंगा। देयर इज नो ब्लाइंड फेथ, यू मस्ट हैव द फेथ विद द रीजंस। हमारे शकुनी हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, पितामह हैं, हमारी संस्कृति का आधार पूर्ण सत्य है, कोई अंधविश्वास जैसी बात नहीं है। आज हम कहते हैं वडिलों का आदर करो, उनका चरण स्पर्श करो, स्पर्श से उनके सामने बैठने से उनके संकल्प से आपका विकास होगा, या विचार करो। लेकिन फिर हमारी संस्कृति का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिकरण नहीं, भारत की कोई प्रथा अंधविश्वास में आपको नहीं ले जाती। मामा पूजनीय है, द्रोणाचार्य जी गुरु हैं पूजनीय है, पितामह परम पूजनीय है, ये जानते हैं, मामा भी जानता है सुखनी, द्रोणाचार्य जी भी जानते हैं, अनजाने नहीं है, पितामह भी जानते हैं, पितामह की इच्छा मृत्यु है। द्रोणाचार्य जी को वरदान प्राप्त है कि जब तक अपने पुत्र अश्वत्थामा के मरण का समाचार नहीं सुनेंगे ये हमेशा जीवित रहेंगे। आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही स्वयं गलत काम करना, अपनी मर्यादा के बाहर जाना और गलत आदमी की मदद करना। मनोविज्ञान मान गया आप कर्म से महान बनेंगे। लेकिन महान बनने के बाद भी अगर आप मर्यादा से बाहर जाएंगे तो आपकी शक्ति, आपकी सिद्धि, आपका पद, आपकी योग्यता, आपका सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री, सबका सत्यानाश हो जाएगा। कितना सावधान सिद्धि प्राप्त करके, चाहे कुर्सी की सिद्धि हो, कई पद की सिद्धि हो, पैसे की हो, सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आप सिद्धि प्राप्त करके अगर अपनी मर्यादा के बाहर जाएंगे, चाहे आप क्लास वन ऑफिसर हैं, चाहे बहुत बड़े संत हैं, चाहे करोड़पति हैं, उस सिद्धि को टिकाने के लिए भी बहुत जबरदस्त तप करना पड़ेगा। लालच में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी पद की इच्छा के लिए गलत रास्ते नहीं चलना है। और जो लोग चले हैं, पेपर के माध्यम से देख लीजिए, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। अब यही मेरे प्रिय आत्मन आज ये मनोविज्ञान मान रहा है कि भारत के माता पिता गुरु के संपर्क में रहना, उनसे संबंध स्थापित करना, आखिर क्यों? जो सत्संग की महिमा गाई गई, जैसा कि आपको बताया, पशु पंछियों को देख करके भी किस तरह से शक्ति का प्रजनन हो रहा है, इसलिए अब विज्ञान भी, अभी खुलेआम नहीं बोल रहा है, मेरा तो विज्ञान को संबंध है, समय समय बातचीत होती रहती है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ढंग से, जब बात आ जाएगी। लेकिन आज भी कह रहा हूं, हमारी बात कि परमात्मा का विशेष गुण सब में है, इसलिए विज्ञान भी मान रहा है, हे मेरे प्रिय आत्मन, जाति पाति के चक्कर में ना पड़ो, मंदिर मस्जिद के चक्कर में ना पड़ो, ये तो व्यक्ति की शक्ति का एक प्रतीक है। आपका हाथ लगा, मैं आपकी मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, आपके स्पर्श से हमारे ब्राह्मण है, ये मनोविज्ञान जवाब दे रहा है, हमारे जो कोटि के ब्राह्मण है कर्मकांडी, हमारे जो संत हैं, आप हैं बैठे हुए, आज आपका मनोविज्ञान कह रहा है, ऐ मनुष्य, हाथ के स्पर्श से मूर्ति में प्राण का संचार हो जाता है, तेरे विचार में, तेरे स्पर्श में इतनी ताकत है, तो अच्छे विचारों से तू अपना स्पर्श करेगा तो तेरी पूजा समाज में क्यों नहीं हो जाएगी? लेकिन हाथ लगा कहां है? हाथ तो दूसरे गिराने में लगा है। भारतीय संस्कृति कहती है अपना हाथ जगन्नाथ। आज इसी बात पर विचार किया जा रहा है। प्रिय आत्मन, आप नर हैं कि नारी? आपका हाथ कहां लगा है? आपका हाथ है जगन्नाथ, तो आप अपने में जगन्नाथ देख रहे हैं कि रावण देख रहे हैं? जैसा कि शुरू में कहा कि जो शाश्वत है, जो प्रकृति है, उसमें से आकार बनाना आपके हाथ में है। आप हाथ तो नहीं बना सकते, लेकिन आकार क्या देना चाहते हैं? इसी आकार को देने में सबसे पहले विचार करना पड़ेगा। गीता का 18 अध्याय, कृष्ण को क्या जरूरत थी कहने की? यही कि अर्जुन जो निर्णय ले, वो रिश्ते के दबाव से नहीं, मित्र के दबाव से नहीं, गुरु के दबाव से नहीं, बल्कि समझ करके बिना दबाव के जो निर्णय है वो परमात्मा का है। इसको जरा समझिएगा। अर्जुन क्या कहता है, आपका कर्मयोग भी ठीक, भक्ति योग ठीक, ज्ञान योग ठीक, भगवान अगर रिश्ते की बात करते तो 18 अध्याय गीता प्रकट करने कोई जरूरत नहीं थी। कहते मैं तेरा मित्र हूं, जो मैं कहता तू कर, नहीं। आज मनोवैज्ञानिक विचार करते हैं, हम गुरु हैं, हम मित्र हैं, हम भाई भाई हैं, हम माता पिता हैं, हम पड़ोसी हैं, हमारे दबाव के प्रभाव से हमारा पुत्र, हमारा शिष्य, हमारा पड़ोसी अगर कोई निर्णय लेगा तो दबाव का निर्णय विनाशक होता है, दाहक होता है, पोषक नहीं होता। इसलिए 18 अध्याय की जरूरत पड़ी कि जो अर्जुन निर्णय ले, इसने भय में आकर पलायनवाद का निर्णय लिया, इस समझ के निर्णय नहीं लिया। मैं आपसे कहता आप सन्यासी बनो, लेकिन भय के कारण नहीं, घर में सब खत्म हो गए, बाबा बन गए, क्या करोगे? ये कितनी ऊंची बात है। अर्जुन तू कांप रहा है, तेरी बुद्धि ठीक नहीं है, तेरे में कंपन है। जब तेरे में कंपन है तो तेरा निर्णय पलायनवाद का ये कैसे मैं ठीक मानूं? यही मैं आपसे कहता हूं। आप डर रहे हैं, आप भय में हैं, आप लालच में हैं, आप लोभ में हैं, आप अपने में हैं कि नहीं? और जब अपने में होंगे तो आनंद होगा। और फिर यही, चाहे युद्ध की बात हो, गांधी उठाने की बात हो, सुदर्शन की बात हो, राम को बाट चलाने की बात हो, राम ने जो निर्णय लिया वो समझ कर लिया, भय के कारण नहीं लिया। कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे हैं, वो भय के कारण पलायनवादी बन रहा था, लेकिन जब समझ आई, जब ज्ञान हुआ, तो सहज रूप से कर्म में लग गया और आनंद से कर्म को किया। यही मैं मनोविज्ञान के आधार पर बताना चाहता हूं। सन्यासी के रूप में आना है तो समझ के आना, भाग करके नहीं आना। आप कई बार लोग आते हैं हमारे पास, है कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, यहां भी बैठे हैं कमिश्नर वगैरह, सब क्लासों में बैठे हैं, कहते महाराज जी बहुत परेशान हो, बहुत दबाव है। तो बड़े प्यार से कहता हूं कि डोंट रिजाइन द चेयर, रिजाइन द ट्रबल। कुर्सी का त्याग न करो, जिसके कारण दुखी हो उसका त्याग करो। आप सब कुर्सी के त्याग करोगे समाज की व्यवस्था, यही कृष्ण कह रहा है। तू अपने धर्म का, अपनी कुर्सी का, अपने पद का, आज के हिसाब से तो अपने पद का त्याग इस तरह घबरा के करता रहेगा तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैं अपने कमिश्नर कलेक्टर से कहता है, परेशानियां जान जिम्मेदारियां हैं, मैं आपसे बार बार कहता हूं, जितनी जबरदस्त जिम्मेदारी लेकर चलोगे परेशानियां आएंगी, लेकिन अर्जुन की तरह भागते रहोगे तो समाज की व्यवस्था क्या होगी, समाज किधर जाएगा? आप पद से न भागे तो आप राष्ट्रपति हैं कि प्रधानमंत्री हैं, आप कलेक्टर कमिश्नर कि डॉक्टर, कि आप साधु हैं, संत हैं, किसान हैं, कुछ भी हैं, या आप ड्राइवर हैं कि चीफ हैं, कुछ भी हैं, आप आगे बढ़ने की बात करें। ये जो आपका स्वरूप है, भागने की बात न करें। अर्जुन अगर तू भागेगा तो तेरे को कब्जे से मिलेगा और समाज में दुष्टों का प्रभाव हो जाएगा, इसलिए अपने धर्म का पालन कर। यही मैं आपसे कहता हूं। जब 18 अध्याय के बाद अर्जुन की समझ में बात आ गई तो सहज हो गया। हम लोग इतना उपदेश क्यों देते हैं, आप मेरे शिष्य, मैं कह सकता हूं, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि मैंने राम को भी उतारा है जीवन में, कृष्ण को भी, पीर को भी, पैगंबर को भी, सबको उतारा है। लेकिन कहना यह चाहता हूं कि सहज रूप से जो निर्णय करोगे तो कर्म करते समय परेशानियां आएंगी, राक्षस आएंगे, राक्षसनियां आएंगी, अवरोध आएगा, विरोध आएगा, लेकिन आप पलायनवादी नहीं बनेंगे। वो दुख में से रास्ता निकलेगा। अब यही एक विचार आज ले जाओ, हमेशा जन्मदिन पर कोई न कोई विचार आपको देता हूं, आप जीवन में उतारने की बात करता हूं। परमात्मा आपके साथ है, लेकिन विचार करो कि आप परमात्मा के साथ हैं कि नहीं। यहां मंदिर में बैठने की बात नहीं करता हूं, खंडन भी नहीं करता, हरिद्वार की बात नहीं करता, जाओ कि ना जाओ, मैं न पक्ष में बोल रहा हूं न विपक्ष में। मैं नहीं कह रहा हूं कि नदी में नहाते हो कि नहीं नहाते, सिर्फ ये कह रहा हूं जो कुछ आप पूजा कर रहे हो नदी की करते हो कि मंदिर में करते हो, हरिद्वार में करते हो, बनारस में करते हो कि मक्का मदीना में करते हो, वहां से मन शक्ति प्राप्त करके कर्तव्य का पालन करे। और पहला कर्तव्य आपका यह है, अपने में अच्छा विचार लाओ, किस धर्म में लड़ाई की बात है, किस धर्म में झूठ बोलने की बात है, किस धर्म में घृणा करने की बात है। हर धर्म सत्य प्रेम को स्वीकार करता है, भाईचारा को स्वीकार करता है, लेकिन नहीं, हम आप इस धरती पर आए, हमें कुछ सुनाया गया, हम थे कुछ और हो गए कुछ और, हम थे पवित्र और हमने एक समूह को पवित्र माना और दूसरे का अपवित्र माना। आप वेदांत उठा के देखें, मैं अपने ऊपर लेता हूं, मैं कहता हूं मनीषानंद अच्छे संत हैं, दूसरे संत अच्छे नहीं है, इस जैसा खतरनाक अज्ञान दुनिया में और कोई नहीं है। मैं अच्छा हूं दूसरा बुरा है, मैं जो बताता हूं वही सही है दूसरा नहीं, ये ज्ञान अज्ञान बन करके बड़ा खतरनाक हो गया। बस एक आदमी उंगली का इशारा करता है, देखो ये मनीषानंद बैठे हैं, उसका कपड़ा गिरुआ है, एक का सफेद है, मनीषानंद कौन है ये है, एक का काला कपड़ा है, मनीषानंद कौन है ये है। गिरुए वाले ने भी उंगली उठाई, सफेद वाले ने भी उठाई, काला कपड़े वाले ने उठाई, और एक बस नहीं पहनता बालक जैसा है, उससे पूछा गया मनीषानंद, वो भी उठाया। तो आप बताइए, आपको मनीषानंद को पकड़ना है कि कपड़ा लाल करना है कि गेरुआ करना है कि सफेद करना है कि उठाकर फेंकना है, क्या करना है। एक बालक भी बता रहा है मनीषानंद है, तो आप नंगे हो जाओ, इस संप्रदाय की बात कर रहा हूं। कुछ संप्रदाय है जहां कपड़ा नहीं पहनते, कुछ का पीला है, कुछ का काला है, कुछ का लाल है, कुछ सफेद है। अरे जब सत्य को पहचान जाओगे तो सारे रंग उसी सत्य में है, ये भेद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो केवल कपड़े को पहचाने। एक बार अम्बालाल साहब से कहा, साहब आपका पैंट बूसर्ट आपका पैंट शर्ट मैं पहन लेता, आप ये पहन लीजिए, अभी आने वाले क्या कहेंगे। पैंट बूसर्ट मनीषानंद पहन लिए तो मनीषानंद गायब। अब कहने के मतलब आप कपड़ा पहचानते हैं, ये मर्यादा रखना मैं बता रहा हूं, ये तो प्रतीक है, इसके लिए आस्था है। ये तो मैं कहता दुनिया भर की लालच आ जाए, लेकिन आपसे सच कहता हूं, इस दुनिया के पास बहुत पैसा होगा, इस दुनिया के पास बहुत जमीन होगी, आए दुनिया वालों, तुम मनीषानंद के लिए जमीन खरीद सकते हो, मनीषानंद के लिए सब सुविधा कर सकते हो, लेकिन कोई पैसे के बल पर इस कपड़े पर दाग नहीं लगा सकता। बस इतना आपसे कहूंगा, कितना आपका विश्वास है मेरे पर, उस विश्वास के लिए मैं फना हो जाऊंगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, जब कभी हम सर्वधर्म सम्मेलन में आते हैं मिलते हैं तो मैं यही कहता हूं, सभी की बात ठीक है, आप कुरान पढ़ो कि बाइबल पढ़ो कि वेद पढ़ो, सभी एक सत्य की तरफ जा रहे हैं, व्यवहारिक बात आपका जन्म कहीं भी हुआ, हर बच्चा संस्कार से मुस्लिम होगा, हिंदू होगा, ईसाई होगा, यहूदी होगा, लेकिन हर धर्म में सत्य है, प्रेम है, और सत्य प्रेम ही तो हमारे यहां ईश्वर को रूप माना गया। तो हर व्यक्ति हाथ जोड़ के कहता हो, सत्य और प्रेम को ही हमारे यहां पहले भगवान का रूप माना गया। आप किसी जाति को, किसी संप्रदाय को, लेकिन याद रखो हम जन्म से हिंदू हैं, बाद में कन्वर्ट होकर जिसको जो बनना बना है, लेकिन जन्म से पूरा विश्व हिंदू है और गौरव है कि हम आप हिंदू हैं, गौरव है। कोई कन्वर्ट होता है बैप्टाइज, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, लेकिन जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, शाश्वत हिंदुओं में से निकलकर कोई गए हमने जाने दिया, लेकिन उसमें से कोई निकले तो अब यही हमने ओम पूर्ण भदा पूर्ण विदम की साधना की, हमने कभी किसी को पराया माना नहीं। हमारा ब्राह्मण जब प्रार्थना करेगा, जब पूजा करेगा, तो देखिए पूरे ब्रह्मांड की पूजा करता है, पूरे विश्व को सामने रखता है। हमारी कोई बात है बताइए जो किसी खास जाति पांति के लिए हो, पूजा की, पाठ की, नमस्कार के करने, कोई बात, हम तो अंतरिक्ष की शांति की बात करते हैं, हमारा ब्राह्मण करता है, पृथ्वी की शांति की बात करता है। अगर हम में भेद होता तो शायद ऐसा नहीं करते। इसलिए हिंदू धर्म एक टोटल है, मानव मात्र के लिए है, इसमें मनुष्यता है, मानवता है। तो झगड़ा किस बात का हो गया? झगड़ा इस बात का हुआ कि हम कपड़े से लड़ने लगे, मेरा कपड़ा गेरुआ है, मैं ही सत्य दिखा सकता, काला वाला नहीं दिखा सकता, नंगा वाला नहीं दिखा सकता, और एक कपड़ा मैं नहीं हूं, हुई चीज है, और जो रुकी हुई चीज है मनोविज्ञान कहता है सड़ जाती है। इसलिए संप्रदाय रुकी हुई चीज है और सड़ी हुई चीज झगड़ा पैदा कर रही। सत्य झगड़ा नहीं पैदा कर रहा, प्रेम झगड़ा नहीं पैदा कर रहा है, प्रेम सत्य तो ईश्वर के निकट ले जाते हैं। आप हैं ईश्वर के पास, अगर सत्य प्रेम को स्वीकार किया तो आप ईश्वर के पास सहज हैं। मैंने झूठ बोला, क्यों बोला? अपने फायदे के लिए, लेकिन जब पता चला कि पता लग जाएगा तो मैं भयभीत हो गया। मेरा नाम है मनीषानंद, कहीं मान लीजिए क्या हमने अपना नाम कृष्णानंद बोल दिया कोई फायदे के लिए। एक थोड़ी सी बात बताऊं आपको, बहुत पुरानी बात है, करीब करीब 35 साल पहले की। कहीं मैं भ्रमण कर रहा था तो रात हो गई और दिसंबर का महीना था, उधर ठंडी बहुत पड़ती है, तो मैंने कहा भाई रात में कहीं आश्रय मिलेगा। उन्होंने कहा सामने एक जगह है, गए, मुझे देखा। मैं वो सब किसी संप्रदाय या किसी के विचार का खंडन नहीं करता, लेकिन बात बता रहा हूं, इसलिए संप्रदाय का नाम नहीं लेता। कहते हैं कि गेरुए से तो आप सन्यासी लगते हैं। मैंने कहा लगता नहीं हूं, बोलिए, लगने कोई सवाल नहीं, हूं सन्यासी। तो देखिए मेरे कागज पर लिखना पड़ेगा कि आप इस संप्रदाय को मानते हैं, आप मत लिखना, लेकिन लिखिए कि इस संप्रदाय को मानते हैं तो आपको जगह मिलेगी। मैंने कहा मैं नहीं लिखूं तो कहते ठंडी में मर जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं। अब ये संप्रदाय तो एक गौरव की बात है, और गौरव में मानवता खिलती है, तो वहां नियम का पालन करके मुझे मरने वाली बात कहा लेकिन जीने की बात नहीं सिखाए। यही मैं आपसे कहता, हमारा हिंदू धर्म है जीने की बात करता है, चलने की बात करता है, टोटल की बात करता है, उस समुदाय का नाम नहीं लेता। तो एक बात कहता, फिर गया मैं रेलवे स्टेशन, पाया स्टेशन मास्टर थे, दिया जगह वगैरह दी, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब भूम गोपाल की है। लेकिन एक बात बताता, कब तक ये आपने एक आकार बना लिया, संप्रदायिक लेवल लगा लिया, और आप भी दुखी, मैं भी दुखी। एक बार मेरे पास कोई आए, कहे स्वामी जी आपके यहां भोजन कौन बनाता है? तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा भाई बड़े प्यार से कहता हूं, मैंने कहा भाई जो शमशान में रहता है वो भोजन बनाता है। कहे फिर तो मैं नहीं खाऊंगा शमशान में रहने वाले का भोजन। तो मैंने कहा जब आप मेरे अतिथि आए हैं तो मेरी व्यवस्था में रहिए ना, नहीं तो आए क्यों। अब जा सोचिए आपके शमशान में, मैंने उनसे कहा कि आपके शमशान में शिव रहता है और आप शिव को इनकार कर रहे हो जबकि आप शिव उपासक हो। कहा आपका भगवान नहीं है, लेकिन शमशान का नाम सुनते ही कहते नहीं मैं तो शमशान में रहने वाले का भोजन नहीं करूंगा। तो मैंने कांत में शमशान तुझे भोजन तो बना ही देगा, जल तो जाओगे, फिर वहां इनकार करना कि शमशान में मुझे जलने की कोई जरूरत नहीं।